समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल श्रोताओं। वक्त हुआ है आपके पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। तो श्रोताओं, अभी देश में उत्सव का माहौल है और उत्सव कहीं चुनावी है, कहीं महाकुंभ का उत्सव है, तो कहीं प्रवासी भारतीय दिवस का उत्सव है जो कि आज मनाया जा रहा है। और इस समय हमारे देश में भारत से जो गए हैं, प्रवास कर रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में, वो सब लौटे हुए हैं और ये दिन उनको पुरस्कृत करने का और दरअसल वो भारत की मिट्टी को संजोने और भारत की मिट्टी में अपना अस्तित्व और समेटने के लिए और अपनी खुशबू जो है वो फैलाने के लिए आए हुए हैं। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ है और इसमें हम आपको वो सब जानकारी देंगे जिनका आपसे सरोकार है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और हम उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज़ हेडलाइंस फर्स्ट।
ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युवाओं को भारत की प्रगति का निर्णायक कारक बताया।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 2 lakh crore rupees इन आंध्र प्रदेश दिस इवनिंग।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में शुरू।
बांग्लादेश रिवोक्स पासपोर्ट ऑफ आउटस्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना।
भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मलेशिया ओपन बैडमिंटन के मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
Yes, and now Divya, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Pravasi Bharatiya Divas Sammelan.
बिल्कुल अभिषेक, और कहते हैं कि प्रवासी अपनी जड़ों से दूर रहकर भी बरगद की तरह फैले हुए हैं विश्व के अलग अलग हिस्सों में और प्रवासी अपनी संस्कृति की खुशबू बिखेरते हैं विश्व के हर कोने में, संजो के रखते हैं भारतीयता को, भारतीय संस्कारों को पोषित करते हैं वहाँ पर। और वापस से जब वो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं वो यादें धुंधली पड़ रही हैं, तो फिर से आते हैं अपने देश, अपने वतन लौटते हैं फिर से वो महक भरने के लिए और यादों के अनगिनत किस्से बनाने के लिए, नई पीढ़ी को भारत के कई और किस्से सुनाने और अपने अस्तित्व में भारत को और समेटने के लिए। ये है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। इसमें 75 देशों से आए लगभग 6000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत से भी वो परिचित होंगे। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी दिवस कार्यक्रम से हुई और इसका आयोजन ओडिशा सरकार ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया और कहा कि भारत में अमृतकाल में विकसित भारत की यात्रा शुरू हुई है। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय का योगदान। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन पहली बार देश के पूर्वी हिस्से में हो रहा है ताकि सरकार की पूर्वोदय योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिले। ये योजना बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विकास के लिए बनाई गई है।
Yes, absolutely. Divyan, more than 6,000 non-resident Indians, NRIs, from about 75 countries are participating in the convention. And the Odisha government has made efforts to showcase the state's rich culture and heritage to the delegates. And the convention began with a youth Pravasi Bharatiya Divas event jointly organized by the Odisha government in partnership with the Union Ministry of Youth Affairs and Sports. And the convention is a significant occasion to celebrate India's relationship with the global Indian community.
प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जनवरी 2003 में हुई. इसे आज ही के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी घटना को यादगार बनाने के लिए आज के दिन यानी 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी. इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी उपलब्धियों को पहचानना है. तीन दिवस के इस सम्मेलन में देश और विदेश से 5,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे. प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई. हर दो साल में एक बार देश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिए जाएंगे और इस वर्ष 27 प्रवासी भारतीयों को ये सम्मान दिया जा रहा है. ये भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान है और ये अभिषेक इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि प्रवासी जो है वो विदेश में भारत को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, भारत के लिए जिस तरीके से योगदान करते हैं, तो उनके लिए ये इस प्रवासी भारतीय सम्मान
दिया जाता है. इंडियन कल्चरल एम्बेसडर्स अब्रॉड, इजंट इट? एंड मूविंग ऑन, नोटेबली द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन सर्व्स एज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा एंड फोस्टर इंटरेक्शंस अमंग इट्स मेंबर्स. एंड द 18 PBD कन्वेंशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम जनवरी 8 टू 10 इन भुवनेश्वर. लेट अस नो मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट.
द 3-day लॉन्ग 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन किक्ड ऑफ दिस मॉर्निंग एट भुवनेश्वर इन ओडिशा with more than 6,000 non-resident Indians from about 75 countries participating in it. The convention is considered as a significant occasion to celebrate India's relationship with the global Indian community. The event will be formally inaugurated by Prime Minister Narendra Modi tomorrow and will include a wide range of activities that highlight the contributions of the Indian diaspora in shaping India's development and its global stature. President of Trinidad and Tobago, Christine Carlo Kangalu, will virtually participate in the convention as the chief guest of this edition, which is being held on the theme Diaspora Contribution on a Viksit Bharat. President Draupadi Murmu will preside over the valedictory session on Friday. The President will also confer the Pravasi Bharatiya Samman upon members of the Indian Diaspora to recognize their achievements in various fields. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Welcome to a special celebration in the heart of western Odisha, Bargar, where a unique and captivating festival takes place every winter, the Bargar Dhanu Yatra. And this incredible event seamlessly weaves together mythology, culture, community and economics, making it one of a kind. We have more from a Sambalpur correspondent.
The Dhanu Yatra festival in Bargar, Odisha, celebrates the legendary victory of Lord Krishna over the demon king Kansa, symbolizing the triumph of good over evil. For 11 days, starting last Friday, Bargar transformed into Mathura Nagari, ruled by Maharaja Kansa, with the nearby village of Amapali becoming Gopapura. Along with Amapali, the entire town became an open stage where residents reenact scenes from the mythical Dwapara Yuga, turning the festival into the world's largest open-air theater. In Hindu mythology, Kansa is a fair demon king. However, Bargar portrays him as a wise and caring ruler who his people love. During the festival, King Kansa, atop an elephant in his grand procession, interacts with the town folk, ensuring good governance. If he spots any wrongdoing, he imposes fines or sends offender to jail. Action accepted with respect by the people. This portrayal of Kansa's just leadership has symbolized fairness in Bargar. After Kansa's death at the hand of his nephew Krishna, the townspeople postpone the Pausa Purnima harvest festival to mourn the king, reflecting their admiration for his governance. The Dhanu Yatra is a vibrant celebration of tradition, community spirit, and Odisha's rich cultural heritage. For Parikrama, Bismita Pradhan, Akashvani, Sambalpur.
और श्रोताओं, जैसा कि हम आपको बता रहे थे डेटलाइन इंडिया डेटलाइन में कि 8 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस. आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है और कल यानी 9 जनवरी को वैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है. और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. तो केंद्र सरकार की पहल पर नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी बच्चों को देश के बड़े शहरों का भ्रमण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के विकास और विविधता से इन बच्चों को परिचित कराना है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद प्रभावित नारायणपुर जिले से 30 बच्चे मुंबई का दौरा कर वापस लौटे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला।
यह विशेष शिविर मुंबई में 12 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस विशेष शिविर में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के बच्चों ने अपनी संस्कृति को प्रस्तुत कर मुंबई जैसे मंच पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से जाकर महानगर में अपनी संस्कृति और प्रतिभा का प्रदर्शन करना इन बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र की यह पहल इन बच्चों के लिए शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिविर के दौरान बच्चों ने मुंबई के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा किया। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच और सिद्धि विनायक मंदिर जैसे स्थलों पर जाकर महानगर की जिंदगी को करीब से देखा और समझा। इस विशेष शिविर के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में नारायणपुर जिले के हर्ष कुमार ने पहला स्थान और बीरू सलाम ने तीसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। वहीं डांस प्रतियोगिता में भी नारायणपुर के बच्चों को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
The Puducherry government has taken a major step to ensure road safety by mandating the wearing of helmets for all two-wheeler riders from January 12, 2025. And in an effort to encourage voluntary compliance, the traffic police have launched a special campaign titled Mission Zero Fatality. Through innovative outreach programs and collaborations, the campaign aims to educate the public, especially youngsters, about the importance of wearing helmets to prevent fatal accidents. We have more from a correspondent.
The roads of Puducherry are witnessing a unique movement as the traffic police embark on their ambitious campaign to ensure zero fatality on the streets. From public awareness drives to competitions for children, the campaign has brought together the community to focus on road safety. Various activities have been organized as part of Mission Zero Fatality, including special road safety education sessions and essay drawing and quiz competitions on road safety themes for diverse audiences. In connection with the recently concluded regional and state level science exhibition at Ambalam Government School, a dedicated road safety stall was also set up. Additionally, the Traffic Police Department is planning to conduct a helmet awareness motorcycle rally in the town on January 10th. To emphasize the importance of helmets, the Department of Personnel and Administrative Reforms has issued strict guidelines for government employees, asking them to set an example by following the helmet rule. A circular issued by M. Kannan, Undersecretary to Government of Puducherry, says that wearing a helmet is not just a rule, but a crucial step to save lives. Traffic Police Department is also collaborating with institutions like Rashtriya Raksha University to amplify the message. With students, media persons and general public participating in this effort, Puducherry is gearing up to create a safer environment for two-wheeler riders. Bibin Asnath, Akashvani News, Puducherry.
Yes, and Union Food Processing Industries Minister Chirag Paswan inaugurated the Indus Food 2025 in Greater Noida today. The trade show offers an exclusive platform for global businesses to connect with India's dynamic food economy, widely recognized as a food economy of the future. We have more from a correspondent, Bhanu Pratap.
The event aims to bridge gaps by offering an international stage for companies to explore new markets and expand their reach. It not only highlights India's unique food offerings, but also facilitates cross-border partnerships and investment opportunities. Speaking on the occasion, Food Processing Industries Minister Chirag Paswan stressed on the food security and safety for the common people and asked the chefs and officials to ensure the quality of the food being made or served. Mr. Paswan also mentioned that 100 new food testing labs are being set up across the country and to increase the longevity of perishable food items. Bite. Mr. Paswan also assured that the government is committed to becoming a bridge between the policies of the center and private industries. For Parikrama, with Sumit Saha, Bhanu Pratap Singh.
और उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में दिन के समय ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। घने कोहरे के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस बीच दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कहा है कि दृश्यता में सुधार होने के कारण सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।
Yes, and talking to Akashvani News, senior IMD scientist Dr. Soma Sen said that dense to very dense fog conditions will prevail during morning and night hours in some parts of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand for the next 2 days.
We are expecting a fresh western disturbance after a couple of days, which will affect northwest India from south. During the next few days, over northwest India, there is some thunderstorm activity likely, but the main phenomenon over entire north India today will be fog conditions. And the fog will be very dense today and tomorrow over Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, because the northwesterly winds, which were strong yesterday, are likely to weaken from tonight.
In business news today, benchmark domestic equity indices ended nearly flat in a volatile trade today. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 51 points to close at 78,148. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 ended marginally down by 19 points to settle at 23,689. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.8%, up at $77.69 per barrel, and WTI crude also advanced over 1% to trade at $75.07 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 77,910 rupees for 10 grams, and silver 999 fine is also trading up at 91,400 per kilogram when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। बैडमिंटन में भारत के ध्रुव कुपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी आज सुबह कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस शीर्ष जोड़ी ने पहले दौर में दक्षिण कोरिया के सुंग ह्यूइन और हे वोन इओम को 21-13 और 21-14 से हराया। भारतीय जोड़ी का सामना कल चीन के ची झांग और जिंगचिंग से होगा। आध्या वरियाथ और सतीश करुणाकरण की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज सुबह राउंड ऑफ 32 में अमृता प्रमुतेश और अशीत सूर्या की जोड़ी को 21-13 और 21-15 से हराया। महिला डबल्स में भारत की ऋतुपर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा की जोड़ी टूर्नामेंट से जल्द ही बाहर हो गई। वे थाईलैंड की बेनियावा एमसाड और नुंता कर्ण एमसाड से 17-21 और 10-21 से हार गए। वहीं पुरुष सिंगल्स में भारतीय शटलर प्रियांशु राजावत को भी पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन के शी फेंगली ने 11-21 और 16-21 से हराया। वहीं हॉकी इंडिया लीग में कल वेदांत कलिंग लेंसर्स ने श्राची राड बंगाल टाइगर्स को 6-0 से हराकर इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। आज शाम 6 बजे टीम गोंसिका का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन के साथ होगा। यूपी रुद्राज और हैदराबाद तूफान्स के बीच मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा।
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember philosopher and social reformer Keshab Chandra Sen, who died on the 8th of January, 1884. A famous Brahmo Samaj leader of Bengal, he founded a new universal religion, Navabidhan, meaning new dispensation, which aimed to incorporate the best ideas of Western spirituality with Hinduism.
Even as a youth, Keshab's primary concern was the quest for a universal religion. In 1857, while still in college, he established the Goodwill Fraternity, a Unitarian religious society for the students. In one of the meetings of this organization, Keshab first met famous Brahmo leader Debendranath Tagore.
Fascinated by Vedantism, Keshab joined the Brahmo Samaj in 1857 and became its central figure in 1858. Keshab gave new life to Brahmo Samaj, introducing new ideas and activities in it.
After being appointed the Brahmo Samaj Acharya in 1862, Keshab insisted on giving up some Hindu customs and practices, such as caste system, untouchability, and child marriage. and became the champion of widow and intercaste marriages. Women's education was one of Keshav's greatest concerns. He also actively supported educational efforts of the Bamabodhini Sabha.
After differences with Debendranath, Keshav Chandra Sen formed a new society in 1866 called the Bharatvarshiya Brahmo Samaj. In 1881, Keshav officially instituted Nobobidhan, a new syncretistic religion based on the union of East and West. We salute the great reformer.
We also remember nationalist Madhu Limaye, who died on the 8th of January 1995.
Madhu Limaye was born on the 1st of May 1922 in Pune. During the freedom struggle, he was associated with the Indian National Congress and the Congress Socialist Party from 1938 to 1948. He also participated in the Goa Liberation Movement in 1955 and was sentenced to imprisonment. He spent over 19 months in Portuguese captivity. A follower of Ram Manohar Lohia, he played an active part in the JP movement in the 1970s.
We salute the great nationalist.
We also remember nationalist and feminist Asha Purna Devi, who was born on the 8th of January 1909 in Calcutta. Growing up during the politically turbulent times of Indian independence movement, a strong sense of patriotism was kindled in Asha Purna from childhood itself. Asha Purna's powerful trilogy, Pratham Pratishruti, Subarnalata and Bokul Katha, depict the women's liberation from colonial India to independent India.
Asha Purna's writings focus on gender discrimination. Her short stories and novels vividly portray the condition of middle-class Bengali women. They entail the repression, angst, growing awareness and the final revolt of women. For her significant contribution to the field of literature, especially feminist literature, Asha Purna Devi was bestowed with the Gyanpith Award as well as the Padma Shri by the Government of India in 1976. On the 13th of July 1995, she passed away. Her literary creations, translated in several languages, remain part of various school curriculum. Salutes the great Indian feminist.
और अब बात उन हस्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. परिक्रमा में आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं
स्टीवन मेनार्ड क्लार्क और स्टीव क्लार्क, हु पास्ड ऑन दिस डे 1991. ही वाज एन इंग्लिश म्यूजिशियन, ही वाज अ गिटारिस्ट एंड सॉन्ग राइटर फॉर द हार्ड रॉक बैंड डेफ लेपर्ड अंटिल हिज डेथ इन 1991. इन 2007 क्लार्क वाज रैंक्ड नंबर 11 ऑन द क्लासिक रॉक मैगजीन्स 100 वाइल्डेस्ट गिटार हीरोज. इन 2019 क्लार्क वाज पोस्टमॉर्टम inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of Def Leppard. Let's listen in to the band's hit track, Animal.
और आज ही ओडिसी नर्तक केलुचरण महापात्र का जन्मदिन है. वे एक सच्चे कला प्रेमी थे. जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को दोबारा से जीवन दिया. ओडिसी नृत्य में केलुचरण महापात्र योगदान को आज भी सराहा जाता है और इसी के लिए भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था.
Yes, and Naveen Kumar Gowda was born on this day in 1886, known by his stage name Yash. He's an Indian actor who predominantly works in Kannada films. He's the recipient of 3 Filmfare Awards South and 2 SEMA Awards. Yash began his career with appearances in several television series in the 2000s. He made his film debut in 2007 with Jambada Hudugi. The pan-India success of Prashant Neel's period action film KGF Chapter 1 in 2018 and KGF Chapter 2 2022 helped Yash attain nationwide recognition. The latter ranks as the highest grossing Kannada film. Let's listen into a dialogue from his movie KGF Chapter 1.
8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकते, हमें खुद रोकना पड़ता है।
और नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर साहित्यकार मोहन राकेश की आज जयंती है। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। मोहन राकेश ने भारतीय नाटकों को मंचन और लेखन दोनों की दृष्टि से दर्शकों के लिए रुचिकर बनाया और उन्होंने कई नाटक उपन्यास लिखे। आषाढ़ का एक दिन उनका बहुत ही फेमस नाटक है और आषाढ़ का एक दिन के लिए 1959 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं इस नाटक के कुछ अंश।
कभी नहीं भूल सकते, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मानसल हो। मैं उसे देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ।
Yes, and Nafisa Ali was born on this day. She's an actress, politician, activist, and former beauty pageant title holder. Nafisa Ali has accomplishments in several fields. She was the national swimming champion from 1972 to 1974. In 1976, she won the Femina Miss India title, represented India at the Miss International contest, and was declared the second runner-up. Ali was also a jockey at the Calcutta Gymkhana in 1979, and she has acted in several Bollywood films.
और भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा की भी आज जयंती है। वो 8 जनवरी 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी। नंदा ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया और 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले से सुनते हैं ये डायलॉग।
क्या है?
हमने फैसला कर लिया साहब, हम पढ़ेगा।
अच्छी बात है, तो स्कूल जाना शुरू कर दो।
नहीं मैम साहब, हम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, हम तुमसे पढ़ेगा।
मुझसे?
हाँ मैम साहब, स्कूल में तो छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है, हमको उधर शर्म आएगा।
लेकिन बड़े लोगों के लिए भी तो नाइट स्कूल होते हैं।
उधर सब
Yes, and Stephen William Hawking was born on this day in 1942. He was an English theoretical physicist, cosmologist and author who was a director of the research at the Center for Theoretical Cosmology at the University of Cambridge. And his book, A Brief History of Time, appeared on the Sunday Times bestseller list for a record breaking 237 weeks. He was a recipient of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the United States. And Hawking allowed the use of his copyrighted voice in the biographical 2014 film, The Theory of Everything, in which he was portrayed by Eddie Redmayne in an Academy Award winning role.
और आज ही अभिनेत्री मैरी वांस नाडिया, जिन्हें फियरलेस नाडिया के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी जन्मदिन है। भारतीय सिनेमा जगत की शुरुआती ख्यात प्राप्त अभिनेत्रियों में से वो एक थी। इन्हें दबंग, निर्भीक, स्टंटबाज या रॉबिनहुड स्टाइल की नायिका माना जाता है। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का ये गीत।
प्यारे पप्पू गोरे गप्पू पास तू मेरे आ,
गोरी कर लो झपक झल्लो छोड़ दे मुझको जा।
प्यारे पप्पू गोरे गप्पू पास तू मेरे आ,
गोरी कर लो झपक झल्लो छोड़ दे मुझको जा।
Yes, and Elvis Aaron Presley was born on this day in 1953, known mononymously as Elvis. He was an American singer and actor known as the King of Rock and Roll. He is regarded as one of the most significant cultural figures of the 20th century. Let's listen in to his hit track, Jailhouse Rock.
Born through a party in the county jail, the prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Everybody now.
और आज भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान ज्ञान सेकरन का भी जन्मदिन है। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उन्होंने देश के लिए कांस्य पदक जीता था। अप्रैल 2018 में वो विश्व रैंकिंग में 48वें स्थान पर थे। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस के पुरुष एकल में साथियान ज्ञान सेकरन पुरुष एकल में हांगकांग चीन के सियू हैंग लेम के साथ खिलाफ राउंड दो मैच 11-7, 7-11, 4-11, 5-11, 11-9, 12-10 और 11-6 से हार गए थे।
So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us. Till the next time, this is Divya Tomar and me, Abhishek Mukhopadhyay, signing off. Bye and
Namaskar.